नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सुबह होने तक, जिसे लिखा है संतोष सिंह धीर ने। यह भी एक पंजाबी कहानी है। लेखक ने एक गरीब गांव के मेहनती किसान के बारे में बताया है, उसकी बेआराम जिंदगी के बारे में बताया है। मध्यवर्गीय किसान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी इसमें बताई गई है। तो चलिए कहानी शुरू करें। सुबह होने तक। गहरी रात होने तक चंदन जट पके कुएं की जुताई करके थकान से चूर घर की तरफ चला। हाड़ की पहली बरसात ने सावन की बिजली चमकने जैसा दृश्य बना दिया था। अभी तो थोड़ा सूखा है, फिर कहीं पता नहीं झड़ी लगातार बारिश ना होने लगे, या इतनी लंबी बारिश हो कि फसल पीछे ना पड़ जाए, फसल खराब ना हो जाए। जानवरों को खाना डाल के उसने हाथ पैर धोए, छत पर रोटी खाई और बिस्तर पर लेट गया, टेढ़ा हो गया। सुबह जल्दी उठकर जाकर आलूओं की टुकड़ी, ज्वार का छट्टा खिलारना है, फिर जोते हुए खेत में मकई भी लगानी है। सुख से पैरों को पसार कर वह आकाश में तारों को देखता हुआ, वह नींद के आगोश में जानने ही वाला था कि सात की छत से खटिया बिछाते हुए बुंदा बोला, लगता है तुम सारी खेत की फसल बो लिए हो। चन्ना बोला, क्यों नहीं, क्या धक्के हुए हैं। चंदन बिस्तर पर पड़े पड़े ही बोला, अरे अब क्या बताऊं, और काम क्या करना है, एक तो बैल चलती नहीं, एकदम ही रह गया है। कौन सा, मीना? नहीं, दूसरा लाखा, पैर ही नहीं चलाता, तभी तो इतनी देर हो गई। भाई, सारी बात खुराक की है, बुद्धे ने यूं ही कह दिया। अब खुराक तो देते ही हैं जितनी हो सकती है, चांदन की आवाज़ में बेबसी थी। अच्छा, और बुंदा बिस्तर पर लेट गया। तारों भरी नीली छत को देखते हुए चांदन की आंखों में नींद आने लगी। वह सपना देखने लगा कि तारे उसकी आंखों में फसल बन गए और उसके पक्के कुएं में फसल लहलहा रही है। दूसरी तरफ रात में भौंकता कुत्ता धीमा धीमा होता जा रहा है, उसके जहन से उतर गया। गिलास में दूध लेके बचनों चंदन के बिस्तर के पास आई। लो पकड़ो, दूध पी लो। चंदन नींद में बोला, हाँ हाँ हाँ, लो पकड़ो, दूध पी लो, हल्का गरम गरम। चंदन उठ के बिस्तर पर बैठ गया। दूध का गिलास पकड़ कर वह उनींदा सा पीने लगा। आस पास छत पर लोग चुपचाप पड़े थे। बूंदे को भी लगता था कि आंख लग गई थी। बचनों बिस्तर के एक कोने में बैठ गई। बादल बन रहे हैं, उसी समय पानी की एक बूंद गिरी। दूर पहाड़ की गोद में काली घटा गिरी हुई थी, जिसमें से कभी कभी बिजली आंख मार रही थी। बचनों ने धीरे से कहा, लगता है आज फिर बिस्तर खटिया नीचे ले जाने पड़ेंगे। खाली गिलास देते हुए वह कहने लगा, नींद भर के सोना कहाँ नसीब है, दो रातें तो इसी तरह कट गई हैं। नींद से घिरा हुआ चंदन फिर बिस्तर पर लेट गया। पास पड़ी चादर उसने अपने पैरों पर ले ली। बचनों के बिस्तर से छोटी लड़की अपने बाप के पास चली गई और थोड़ी देर भी नहीं हुई कि चंदन के बदन पर सुई सी चुभी। उसने करवट ली, फिर एक बूंद गिरी, उसकी नींद उखड़ गई। बूंदे गिरने लगी हैं थोड़ी थोड़ी, बचनों जोर से बोली, खटिया बिस्तर तो उतारने ही पड़ेंगे। अरे पड़ी रहो, कोई परले नहीं आने लगी। चंदन ने चादर ऊपर तक ओढ़ ली, फिर अबड़ तबड़ पड़ जाएगी, बचनों फिर से घबराने लगी। अरे कुछ नहीं बरसेगा, तुम सो जाओ। बात अभी चंदन के मुंह में ही थी कि मोटी मोटी बारिश होने लगी। आस पास सभी छतों पर अफरा तफरी मच गई। खटिया बिस्तर जुलियां परोलियां में पड़े बच्चे, सोए बच्चे उठ गए। चंदन बिस्तरे उठाने लगा। बचनों तीखे स्वर में बोली, तुम गिनती क्या गिन रहे हो, उतरो और खटिया पकड़ो, मैं ऊपर से नीचे करती हूँ। पानी के बौछार से बच्चे रोने लगे। गली में खड़े होकर चंदन मुडेर से बिस्तरे पकड़ने लगा। बचनों जल्दी जल्दी पकड़ाती जाती। पता नहीं कहाँ से अंबर में इतना पानी कहाँ से आ गया, देखते ही देखते परनाले चलने लगे। दिया जलाकर भीगे हुए बच्चों को बिस्तर पर डाल दिया। दलान और कोठरियों को ढक के पानी से निचोड़ती बचनों नीचे आ गई और कुर्ती का पल्ला निचोड़ती खींच के और कुंठित होके बोली, जब से कह रही हूँ बादल सिर पे आ गया है तब भी इसने सिर नहीं उठाया। सभी जब दलान में बिस्तर डालकर सोने लगे तो लगा कि बारिश हुई ही नहीं। बारिश एकदम से रुक गई और नाले तेज पर नाले जो बह रहे थे वह धीरे धीरे धीमे हो गए। अंदर हुमस थी, धीरे धीरे हवा बिल्कुल बंद हो गई। दिए की लौ सीधी खड़ी थी, कानों के पास मच्छर बीन बजा रहे थे, बच्चे भी भीगे हुए थे। गर्म हवा से घर भट्टी की तरह तप रहा था। अचानक चानन बोला, दरवाजा खुला रहने देती, बारिश तो अचानक घटा बन के आ गई, फिर ऊपर कौन जाता। अंदर तो आग लगी हुई है, मच्छर भी खा रहे हैं, चंदन ने शरीर खुजाते हुए कहा। पसीने से भीगी हुई बीरो पाटे पर बैठ गई। छोटी लड़की परेशान थी पर बचनों भीगे होने के कारण उसे उठा नहीं पाए। उसने पंखे से हवा देकर उसे चुप कराना चाहा। बड़ी लड़की भी उठ बैठी, बाबा नींद नहीं आ रही। छोटा बेटा इंदर बोला, बेबे ये दिया तो बुझा दो। बड़ा बोला, उसे दिए से भी गर्मी लग रही है। चानन उठ के बाहर गली में आ गया। बारिश तो बंद हो गई, बादल भी नहीं दिख रहे, आजकल की बारिश हड़बड़ मचा देती है, बचनों अंदर से बोली। मैंने बिस्तरे गली में लगा बेबे बिस्तरे गली में लगा लेते हैं, परेशान होकर बेटे ने कहा। हाँ सूनी गली में बिछा लेते हैं, चानन अंदर आकर खटिया उठाने लगा। बचनों कमरे से बाहर आई और ऊपर देखकर बोली, अब तो आसमान बिल्कुल साफ है। पड़ोस की केसरी तरखानी भी बोली, बुआ अकेला अकेला तारा गिन लो, बारिश आती है तो सबको परेशान होती है। बाबा मालिक को कौन कहे, अपने बरामदे से खटिया ऊपर चढ़ाते हुए छिंदे ने कहा। चरणों कहने लगी, अब खटिया ऊपर चढ़ाओ, गली में नहीं सोते, अब घंटे भर के लिए क्या ऊपर चढ़ाएं, आधी रात तो बीत चुकी है, देखो तो गली में कौन कौन खटिया बिछाएगा और 100 डंगर पशु आते हैं। चलो छत पर मैं खटिया पकड़ाती हूँ, घड़ी भर चैन से सो सकेंगे। अच्छा अच्छा पकड़ाओ और बच्चों को उठाओ और खटिया बाहर निकालो, कहते हुए चानन सीढ़ी पर चढ़ता मुंडेर पर जा बैठा। बच्चों ने बिस्तरे और खटिया पकड़ाई। चंदन ने फिर बच्चों को बिस्तर पर डाला। बच्चों ने दिया बुझाकर कमरे में ताला लगाया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और बोली, हे भगवान नीचे से ऊपर सांस तो आएगी। बच्चों को सुला कर वह नीचे गई तो कोठरी में उसकी एड़ी धस गई और ऊपर आने के समय सीढ़ी में उसका पैर फिसल गया। गिरने से बचती वह बुदबुदाने लगी, कैसा दोजक जिंदगी है। वह कहती है, मैं कहती हूँ छत पर एक कमरा बना लो, पर जट ने एक नहीं सुनी, लोग तो ऐश लूटते हैं, यहाँ जून काटनी मुश्किल है। उसने कहना चाहा कि अब बड़ी होती बेटी के सोच के वह छत पर पास सोई लड़की उसका लिहाज उसे आ गया, उससे तुम कौन सा तीर मार लोगे, और वह उसके पास आ गई। अच्छा अब आराम से सो जाओ, क्या टैंटे लगाई रखी है, अपने से नीचे देखो। हाँ भाई यह बात तो चंदन की सच है, साथ के घर की नीची छत से करम सिंह की माँ ने कहा। हाँ हाँ में हाँ मिलाई। गर्मी फिर लगने लगी जैसे कभी बारिश हुई ही ना हो। बीबी अतरी के आंगन में उगी किक्कर चुपचाप खड़ी थी। गर्मी से परेशान होकर चंदन कुदरत के विरुद्ध बोला, कोई चंद्रा पापी पहरे पे बैठा है, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा, हमें तो दुख ही दुख है। नीचे डंगरों वाले घर आगे गली में बिस्तर किए, मंगल बोला। बीबी अतरी के आंगन की किक्कर की टहनियाँ थोड़ी थोड़ी हिलने लगी, थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी जिसमें गीली छत की महक मिली हुई थी। बुंदे ने सुख की सांस ली और कहने लगा, लो भाई चंदन अब पहरा बदल गया है, आ बैठा है कोई धार्मिक पुरुष। हाँ बेटा, करम सिंह की अम्मा बोली, धार्मिक लोगों की कोई कमी थोड़े ना है, यह तो कोई महात्मा है अम्मा, बुंदा ने कहा। चंदन की आँख लग गई उसे चुप सोए देख के बुंदे ने ऊंची आवाज में कहा, चंदना, ओ चंदना। चंदन उनिंदा सा होकर बोला, हूँ। नींद आ रही है? हाँ। अच्छा, फिर सो जाओ। बुंदे ने भी करवट ले ली। हल्की हल्की पवन ने जैसे सब दुख धो दिए, प्यार से कुदरत लोरियां दे रही थी। धीरे धीरे सब सो गए। अचानक भूखे शेर की तरह बादल फिर घिर आए। हड़बड़ा कर चंदन की आंख खुल गई। मोटे मोटे भूरे बादल चांद को छोड़कर आसमान में फैल गए। हल्का हल्का अंधकार भी था। चंदन उठ के बिस्तर पर बैठ गया और पैरों से जूती ढूंढने लगा। चंदन की एक तार जैसी तेजी से चौबारे पर चमकी, फिर अगले ही क्षण और बिजली गिरने की आवाज़ आई। डर से बच्चे रोने लगे और कुत्ते भौंकने लगे। राम राम होने लगी। चंदन की चौथाई पाई आंखों से आगे अंधेरे में कोई पीली हरी तिलाल तार अभी तक लरज रही थी। हवा का एक तेज झोंका किक्कर की टहनियों से उलझ रहा था। खेमों, इसे उठाना। बचनों हड़बड़ा के छोटी लड़की को सीने से लगाकर उठी। चंद्रा, आज तो गजब हो गया, पता नहीं कहाँ से फिर चढ़ के आ गया है। और चंदन से जोर तेज आवाज में बोली, अब तुम बैठे क्या सोच रहे हो? अब फिर खटिया उतारनी पड़ेगी। अब नीचे कहाँ उतारे? चंदन का बदन दुख रहा था। तो क्या करें, बादल तो बढ़ रहे हैं। उठो उठो, जल्दी करो। थोड़ी देर पहले तो बादल नहीं थे, बुंदा अपने बिस्तर से उठ के बोला। हवा गई और बादल घुल रहा था, और जिनके चौबारे बने हुए थे वे तो आराम से खिड़की दरवाजे खोलकर सो रहे थे। चंदन ने एक मिनट सोच के कहा, बच्चों के बिस्तर नीचे बिछा देते हैं, तुम सिम्बे के साथ नीचे चले जाओ, मैं अभी यहीं। कुछ बूंदे बरसने लगी। बचनों चिंता से तड़फ कर बोली, ओ तुम्हारी तो मती मारी गई है, नीचे कैसे सो पाएंगे? तुम बिस्तर नीचे पकड़ाओ। अच्छा, वह थोड़ा गुस्से से बोला। बचनों और सिम्बा जल्दी जल्दी बिस्तर लपेटने में लगे। छोटे बच्चे को संभाल कर नीचे उतारा और वह अपने वहीं लेट गया। बारिश हो रही थी। भाई आज ये सोने नहीं देगा, बुंदे को देखकर बोला। ओह, हमारी तो किस्मत ही खराब है, न दिन में चैन न रात में चैन, चैन चैन की नींद नहीं। चंदन की आंखों में नींद पूरी ना होने से आंखें रड़क रही थी। मंजा तो चौबारे वाली का है, मजा तो चौबारे वालों का है। उनके चौबारों में दिए की लो देखकर बुंदे ने कहा, कुदरत है भाई, मालिक की मर्जी। चंदन ने होक्का भरा, घर की तंगी बुरी, रात कितनी रहती है बुंदे? अभी तो बहुत बाकी है। कहीं बादल की वजह से अंधकार तो नहीं? कहाँ, अभी तो आधी रात ही निकली है, अभी तो बादलों की वजह से तारे नहीं दिख रहे। फिर थोड़ी देर पड़े रहो, थोड़ा सांस भी तो चाहिए बंदे को। ओहो, जट को सांस कहाँ। तुम्हारी बात तो ठीक है, बुंदे ने कहा। धीमे धीमे बरसात पानी और हुमस और चंदन और बुंदे की बातें खत्म हो गई। चंदन ने आंखें तो बंद कर ली, पर अब उसके मन में नई धुकधुकी लगी थी, कहीं लेटते ही दिन न चढ़ जाए। उसने सोचे सोचे अपना कान गली की आवाज़ की तरफ लगाया। उसका ध्यान बारिश, हवा का झोंका और बूंदे की बातें को भुलाकर उसका ध्यान मरुआ की खेती की तरफ चला गया। सुबह हो रही थी, आसपास लोग जागने लगे थे, पशु चल पड़े थे, उनकी घंटियों की आवाज़ आ रही थी, गिरजे की गली भी उठ गई थी। वह हड़बड़ा कर उठा, चौबारे पर मुर्गा बांग दे रहा था और सुबह की लो बादलों से निकलकर फूट रही थी। आंगन से पशुओं को खोलकर खेत की तरफ चलता हुआ वह बोला, हाजिरी लगाकर सिम्बे को जल्दी भेज देना वचन कोरे, चाय थोड़ी कड़वी बनाना। उसकी आवाज़ फटे हुए बांस जैसी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।